एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
सब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि हम तेरे बातों को समझ सके और तेरे रास्ता में चल सके। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तो बहुतायत से आशीष दे तेरे वचन के द्वारा और तेरे रास्ता में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा प्रस्तुत कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मसीह व्यवहार भाग दो, और आज हम लोग विश्राम का आशीर्वाद के विषय चर्चा करेंगे। इन दिनों हम मसीह व्यवहार के विषय में बातें कर रहे हैं। हम लोग पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं और हमें पवित्र जीवन व्यतीत करना है। हमें ऐसा जीवन जीना है जिससे परमेश्वर को महिमा हो। हमें उन चीज़ों का व्यवहार करना है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, और हमें उनको नहीं इस्तेमाल करना है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। हमें एक धार्मिक लोग होने के लिए बुलाया गया है जो स्वर्ग के सिद्धांतों के अनुरूप सोचते, महसूस करते एवं कार्य करते हैं। आत्मा द्वारा हम में हमारे प्रभु के चरित्र को पुनः उत्पन्न करने के लिए हम स्वयं को केवल उन्हीं बातों में शामिल करते हैं जो हमारे जीवन में मसीह समान पवित्रता, स्वास्थ्य एवं आनंद उत्पन्न करे। इसका अर्थ यह है कि हमारे आनंद और मनोरंजन को मसीह रुचि एवं सुंदरता के उच्चतम मानकों को पूरा करना चाहिए। आज हम विश्राम का आशीर्वाद के विषय में आगे चर्चा करेंगे। हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद। चलिए हम विश्राम का आशीर्वाद के बारे में बात करेंगे। शरीर एवं मन के स्वास्थ्य के लिए उचित विश्राम आवश्यक है। मसीह वही दयालु निर्देश हमें देता है जो उसने अपने थके हुए शिष्यों को दिया था। तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, मरकुस 6:31। विश्राम का समय परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए अति आवश्यक शांति प्रदान करता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, परमेश्वर कहता है, भजन संहिता 46:10 में रिकॉर्ड है। परमेश्वर ने सप्ताह के 7वें दिन को विश्राम दिन के रूप में अलग करके हमारे विश्राम की आवश्यकता पर बल दिया। निर्गमन 20:10 में हम पाते हैं, विश्राम सोने या अपने नियमित काम को बंद करने से कहीं अधिक है। इसमें हमारे खाली समय बिताने का तरीका शामिल है। थकावट हमेशा तनाव या बहुत कठिन या अधिक लंबे समय तक कार्य करने के कारण नहीं होती है। मीडिया, बीमारी या अन्य अनेक व्यक्तिगत समस्याओं के द्वारा अति उत्तेजित होने से हमारा मन थक सकता है। मनोरंजन शब्द का सही अर्थ पुनः निर्माण है। यह शरीर व मन को मजबूत, स्वस्थ एवं तरोताजा करता है। इस प्रकार विश्वासियों को नए जोश के साथ अपने व्यवसाय में वापस जाने के लिए तैयार करता है। जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने के लिए मसीहों को केवल उन्हीं मनोरंजन के साधनों का अनुकरण करना चाहिए जो मसीह के साथ उनके बंधन को और अधिक मजबूत बनाते हैं एवं स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। शास्त्र निम्नलिखित सिद्धांत को निर्धारित करता है जो मसीहों को अच्छे मनोरंजन का चयन करने में सहायक होंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यह हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2:15-16 में। तो सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो या वीडियो के विषय हमारा क्या रवैया होना चाहिए, इसे हम कैसे लें? ये संचार माध्यम शिक्षा के बड़े साधन हो सकते हैं। इन्होंने हमारे आधुनिक संसार के पूरे वातावरण को बदल दिया है एवं हमें पूरे विश्व के जीवन, विचार एवं गतिविधियों के साथ सरल संपर्क में ला दिया है। एक मसीह को याद रखना चाहिए कि टेलीविजन और वीडियो किसी भी अन्य गतिविधि की तुलना में किसी व्यक्ति के जीवन पर अधिक प्रभाव डालते हैं। दुर्भाग्य से वीडियो और टेलीविजन अपने लगभग निरंतर नाट्य प्रदर्शनों के द्वारा घर में ऐसे प्रभाव लाते हैं जो ना तो स्वस्थ हैं और ना ही उत्थानकारी हैं। यदि हम विभेदात्मक और निर्णायक नहीं हैं तो वे हमारे घरों को एक सिनेमा घर या सस्ते और घटिया किस्म के कार्यक्रम प्रदर्शन स्थल में बदल देंगे। प्रतिबद्ध मसीही हानिकारक, हिंसक, कामुक फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों से दूर हो जाएंगे। दृश्य व श्रव्य संचार माध्यम अपने आप में बुरा नहीं है। वही माध्यम जो मानव दुष्टता की गहराई का चित्रण करते हैं, वे उद्धार के सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं और अन्य उपयुक्त कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। परंतु लोग जीवन की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अच्छे कार्यक्रमों का भी उपयोग कर सकते हैं। मसीह केवल यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत स्थापित नहीं करेंगे कि क्या देखना चाहिए, बल्कि उनके देखने की समय सीमा भी निर्धारित करेंगे ताकि सामाजिक संबंधों और जीवन की जिम्मेदारियों को नुकसान ना पहुंचे। यदि हम अंतर नहीं कर सकते हैं या इसमें संचार माध्यम को नियंत्रित करने की शक्ति का अभाव है तो बेहतर होगा कि हम उसे पूरी तरह से छोड़ दें, बजाय इसके कि वे हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके या अधिक समय बर्बाद करके हमारे जीवन पर शासन करें। देखिए मत्ती 5:29-30 में मसीह के विषय में हमारे चिंतन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बाइबल सिद्धांत कहता है कि प्रभु को देखने से हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, मिलता है 2 कुरिन्थियों 3:18 में। देखने से परिवर्तन आता है, परंतु मसीहों को यह लगातार याद रखना चाहिए कि यह सिद्धांत नकारात्मक पहलू पर भी कार्य करता है। मानवता के पापों और अपराधों को सुचित्र रूप से चित्रित करने वाली फिल्में हत्या, व्यभिचार, डकैती और अन्य अपमानजनक कार्य वर्तमान में नैतिकता के विकार को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। फिलिपियों 4:8 में पौलुस की सलाह इस सिद्धांत को प्रस्तुत करती है जो मनोरंजन के उन रूपों की पहचान करने में मदद करती है जिसका कोई मूल्य है। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। यह पौलुस का सलाह है, फिलिपियों 4:8 में पाते हैं। इसको हम लोग को मानना है। दूसरा, हम देखते हैं पढ़ना एवं संगीत। यही उच्च मानक मसीही विश्वासियों के पढ़ने एवं संगीत सुनने पर भी लागू होते हैं। संगीत शुद्ध, श्रेष्ठ और उच्च विचारों को प्रेरित करने के लिए परमेश्वर का उपहार है। फिर अच्छा संगीत चरित्र के उत्तम गुणों को बढ़ाता है। दूसरी ओर विकृत संगीत आत्मा की लय को नष्ट कर देता है, वह नैतिकता को विकृत कर देता है। इसलिए मसीह के अनुयायी किसी भी प्रकार का संगीत, जैक, रॉक या संबंधित स्वभाव का कोई राग या मुक्तापूर्ण या तुच्छ भावनाओं को व्यक्त करने वाली कोई भी भाषा में भाग लेने से दूर रहेंगे। एक मसीही विचारोत्तेजक गीत या धुन वाले संगीत को नहीं सुनता है। रोमियो 13:11-14, पहला पत्रस 2:11। पढ़ना बहुत कुछ प्रदान करता है जो मूल्यवान भी है, अच्छे साहित्य का खजाना है जो बुद्धि को विकसित और विस्तृत करता है। फिर भी एक हानिकारक साहित्य की बाढ़ भी है जो अक्सर मनमोहक रूप में होता है परंतु बुद्धि एवं नैतिकता को क्षति पहुंचाता है। वन्य साहसिक एवं नैतिक ढीलेपन की कहानियां, चाहे वास्तविक हों या काल्पनिक, विश्वासियों के लिए अनुपयुक्त हैं क्योंकि ये एक महान, श्रेष्ठ एवं शुद्ध जीवन शैली के प्रति अरुचि को उत्पन्न करती हैं एवं मसीह के साथ एकता के विकास में बाधा डालती हैं। तीसरा है अस्वीकार्य गतिविधियां। एडवेंटिस्ट यह भी शिक्षा देते हैं कि जुआ खेलना, ताश पत्ते खेलना, सिनेमा घर जाना एवं नाचना, इन सभी से दूर रहना चाहिए। देखिए 1 यूहन्ना 2:15-17। वे हिंसक खेल कूद संबंधी प्रतियोगिताएं को देखने में समय बर्बाद करने पर प्रश्न उठाते हैं। फिलिप्पियों 4:8। ऐसी कोई भी गतिविधि जो हमारे प्रभु के साथ हमारे संबंधों को कमजोर करती है और अनंत जीवन प्राप्त करने की रुचि को आंखों से ओझल कर देती है, हमारी आत्माओं को शैतान की बेड़ियों से बांधने में सहायक होती है। इसके बजाय मसीह ऐसी खाली समय की हितकारी गतिविधियों में भाग लेंगे जो वास्तव में उनके शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वभावों को तरोताजा कर सके। पौष्टिक भोजन का आशीर्वाद, इसके विषय हम आगे चर्चा करेंगे। सृष्टिकर्ता ने प्रथम जोड़े को आदर्श आहार दिया। जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था। हम पाते हैं उत्पत्ति 1:29 में पाप में गिरने के पश्चात परमेश्वर ने उनके आहार में खेत की उपज को भी शामिल किया। उत्पत्ति 3:18 में हम यह पढ़ते हैं। आज की स्वास्थ्य समस्याएं पतित प्रकार की बीमारियों पर केंद्रित होती हैं जो सीधे आहार एवं जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। वह आहार जिसे परमेश्वर ने नियोजित किया था, जिसमें अनाज, फल, मेवे एवं सब्जियां शामिल हैं, आदर्श स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सही पोषक तत्व प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे मूल आहार। बाइबल शुद्ध पशुओं को खाने की निंदा नहीं करती, परंतु मनुष्य के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए मूल आहार में मांसाहारी भोजन सम्मिलित नहीं था क्योंकि उसने किसी भी पशु का जीवन लेने की कल्पना नहीं की थी और क्योंकि संतुलित शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, एक ऐसा तत्व जिसके लिए विज्ञान ढेरों साक्ष्य प्रदान करता है। जो लोग मांसाहारी पदार्थों का सेवन करते हैं जिनमें कीटाणु व विषाणु होती है जो बीमारी का कारण बनते हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यह अनुमान है कि प्रतिवर्ष केवल अमेरिका में लाखों लोग कुक्कुट भोजन की विषाक्तता के कारण पीड़ित होते हैं क्योंकि निरीक्षण साल्मोनेला कीटाणु व अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा दूषण का पता लगाने में विफल रहता है। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि जीवाणु संदूषण भोजन में रासायनिक योजन और परिरक्षकों की तुलना में कहीं अधिक जोखिम पैदा करता है और इन जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारियों के बढ़ने की आशंका है। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में किए गए अध्ययनों से यह संकेत प्राप्त होता है कि मांस की खपत में वृद्धि से दिल का दौरा, कैंसर, गुर्दा विकार, हड्डियों का कमजोर और भंगुर हो जाना एक बीमारी जो मृत जानवरों का कच्चा या अधपका मांस खाने से होती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और टाइकिनोसिस को बढ़ाने का कारण हो सकती है एवं आयु संभावितता कम कर सकती हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जिस आहार को नियुक्त किया था शाकाहारी भोजन वही आदर्श है, परंतु कभी कभी हमें यह आदर्श आहार प्राप्त नहीं हो सकता है। उन परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति या स्थान में जो लोग इष्टतम स्वास्थ्य में बने रहना चाहते हैं वे सबसे उत्तम भोजन खाएंगे जिसे वे प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे शुद्ध एवं अशुद्ध मांसाहारी भोजन। केवल जल प्रलय के पश्चात ही परमेश्वर ने मांस को भोजन के रूप में प्रस्तुत किया। सभी वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण परमेश्वर ने नूह व उसके परिवार को इस अनुबंधन के साथ मांसाहारी भोजन खाने की अनुमति दी कि वे मांस के भीतर के रक्त को नहीं खाएंगे। उत्पत्ति 9:3-5 में हम यह पढ़ते हैं। एक और अन्य अनुबंध जिसका पवित्र शास्त्र का तात्पर्य यह है कि जो परमेश्वर ने नूह को दिया था वह और उसका परिवार केवल वही खाएगा जिन्हें परमेश्वर ने शुद्ध पशुओं के रूप में निर्धारित किया है। यह इसलिए क्योंकि नूह व उसके परिवार को भोजन के साथ साथ बलिदान के लिए भी शुद्ध पशुओं की आवश्यकता थी। देखिए उत्पत्ति 8:20 कि परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया कि वह अपने साथ जहाज में शुद्ध पशुओं में से प्रत्येक प्रकार के 7 जोड़े लेकर जाए और इसके विपरीत अशुद्ध पशुओं में से प्रत्येक का केवल 1 जोड़ा उत्पत्ति 7:2-3 में मिलता है। लेव्यवस्था 11 एवं व्यवस्था विवरण 14 शुद्ध एवं अशुद्ध भोजन के विषय में व्यापक विवरण प्रदान करते हैं। स्वभाव से अशुद्ध पशु उत्तम भोजन नहीं है, कई या तो मुर्दाखोर या शिकारी होते हैं। शेर एवं सुअर से लेकर गिद्ध एवं नीचे रहने वाली व चूसने वाली मछली जैसे उनके स्वभाव के कारण वे बीमारियों के वाहक के रूप में अधिक उपयुक्त हैं। अध्ययनों से पता चला है कि सुअर के मांस एवं कवच मछली दोनों में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल की औसत मात्रा के अतिरिक्त दोनों भोजनों में असंख्य एवं दूषणकारी तत्व पाए जाते हैं जो मानव विषाक्तता से संबंधित हैं। अशुद्ध भोजनों से दूर रहकर परमेश्वर के लोगों ने अपने चारों ओर के भ्रष्ट अशुद्ध संसार से छुटकारे के लिए अपनी कृतज्ञता का प्रदर्शन किया। व्यवस्था 20:24-26 तथा व्यवस्था विवरण 14:2 किसी भी अशुद्ध पशु को अपने शारीरिक मंदिर में पेश करना जहां परमेश्वर का आत्मा निवास करता है वह परमेश्वर के आदर्श से कम है। नए नियम ने शुद्ध व अशुद्ध मांसाहारी भोजनों के बीच भेद को समाप्त नहीं किया। कुछ का मानना है कि क्योंकि इन आहार संबंधी नियमों का उल्लेख व्यवस्था में किया गया है इसलिए वे केवल अनुष्ठानिक या कम कांठी हैं और इसलिए अब मछलियों के लिए मान्य नहीं है। यद्यपि शुद्ध व अशुद्ध पशुओं के बीच भेद नूह के दिनों का है, इसराइल के अस्तित्व से बहुत पहले स्वास्थ्य के सिद्धांतों के रूप में ये आहार नियम सदा के लिए एक दायित्व दर्शाते हैं। तीसरा, हम आगे देखेंगे नियमितता, सरलता एवं संतुलन। सफल आहार सुधार प्रगतिशील हैं और उन्हें समझदारी से समझा जाना चाहिए। अंततः हमें उच्च वसायुक्त शर्करायुक्त खाद्य पदार्थों को खत्म करना या केवल कम से कम उपयोग करना सीखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उन्हें यथासंभव सरल और प्राकृतिक तरीके से तैयार करना चाहिए और अधिकतम लाभ के लिए नियमित अंतराल पर खाना चाहिए। मिश्रित उत्तेजक आहार अति स्वास्थ्यप्रद नहीं है। कई मसाले पाचन तंत्र को उत्तेजित करते हैं व उनका निरंतर उपयोग अनेक स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो आज हम सीखे क्या चीज हमें खाना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें जो परमेश्वर बाइबल में सलाह दिया है उसे हम पढ़ें और उसके अनुरूप हम जीवन यापन करें, जिससे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसा करने से हम सबों से खुश रहेगा और हम सबों को आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इन वचनों के अनुसार, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए हमें आत्मिक बल दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें सिखाया है बाइबल से हमें विश्राम के लिए क्या अच्छा है और हमें क्या खाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। बाइबल में तूने हमें यह दिखाया है पिता, हम उसे माने और तेरा राह में चले। हमें तू बुद्धि दे, हमें तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति दे पिता, कि हम तेरे बातों को मानने के लिए हम तेरे बातों को हम मान सके। हमें तेरा राह में चला और हमें तेरा राज में उसी के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।